उनकी छठी सिफ्त जो है, जो इबादुर रहमान है, उनकी छठी सिफ्त है आयत नंबर 70 में, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़कू, ये वो लोग हैं कि जब खर्च करते हैं, लम युसरिफू, तो वो असराफ नहीं करते, वलम यक्तुरू, और वो लोग जो हैं वो बुखल नहीं करते, वकान बैना ज़ालिका कवामा, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर जो है वो कायम रहता है। अब आप देख लीजिए कि यहां पर अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि उनके दिन और रात ही की बात नहीं है, बल्कि उनके पैसे पर, उनका जो पैसा है, उनका जो माल है, उस पर भी जो है वो अल्लाह की हुकूमत चलती है। क्यों? इसलिए कि वो ये नहीं कहते कि हमारा पैसा है, हम जो चाहें उसका जो है वो इस्तेमाल करें। अल्लाह के मकबूल बंदे, अल्लाह के पसंदीदा बंदे जब पैसों का इस्तेमाल करते हैं, जब पैसे जो हैं उनको खर्च करते हैं, तो उस वक्त जो है वो एतदाल के अंदर रहते हैं, यानी अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना जो है वो उससे वो बचते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि किस तरह से अल्लाह की नाफरमानी से जो है वो बचा जा सकता है? अब यहां पर ये बात जानना जरूरी है कि इसराफ क्या होता है। क्यों? इसलिए कि वो लोग जो हैं वो इसराफ और इक्तार, इसके दरमियानी कैफियत जो है ना, उसमें वो लोग रहते हैं। तो इसराफ जो है, सीन राफा, इसके मानी होते हैं जरूरत के कामों से ज्यादा खर्च करना, है ना, कि जिस चीज पर खर्च करना है, जो उस पर जरूरत है, तो उस पर ज्यादा खर्च करना। मसलन आप यहाँ पे बैठी हुई हैं और हॉल में आप बैठी हुई हैं, पंखे चल रहे हैं, और पंखे जब चल रहे हैं तो कैसे पंखे आप चलाएंगी कि जहां आप बैठी हुई हैं हॉल में, जहां बस उसी जगह पे पंखा ऑन होना चाहिए, लेकिन आप जिस जगह बैठी हैं वहां के लिए दो पंखे काफी हैं और बाकी जो छह पंखे हैं वो एक्स्ट्रा चल रहे हैं। तो जरूरत की जगह पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया, तो जो बाकी छह पंखे हैं वो क्या है? वो असराफ है। तो दो पंखों की जरूरत है तो दो ही जो है वो चलाए जाएंगे। आप घर के अंदर हैं, आपके घर के चार कमरे हैं, लिविंग रूम है और दो बाथरूम है। अब क्या है कि पूरे घर की लाइटें ऑन है, आप जिस कमरे के अंदर हैं, आप लिविंग रूम में बैठे हैं या कमरे के अंदर हैं, बस वहां की लाइट ऑन होनी चाहिए, जो बाकी सारी लाइटें ऑन है वो क्या है? वो इसराफ है। आपने खाना पकाया है, खाना पकाया है और आप फैमिली के चार पांच मेंबर है, तो जरूरत से इतना ज्यादा पकाया है कि जब जो बच गया वो बाहर आपने फेंक दिया है, बाहर डाल दिया है। और अक्सर लोग खाना जब बनाते हैं तो इतना होता है कि यहाँ पे चूंकि गरीब और जरूरतमंद इस तरह के मिलते भी नहीं कि किसी को दिया जाए, तो ज्यादातर बाज़ औक़ात फिर वो गार्बेज में जाता है। तो ये चीज क्या है? ये इसराफ में आती है। और इससे पहले आप ये भी पढ़ चुकी कि एक इसराफ है और एक तब्जीर है, ना, कि इसराफ होता है कि जरूरत की जो काम है जरूरत से ज्यादा खर्च करना, जैसे हमने मिसाल से समझा। और तब्जीर क्या होता है? बजारा बीज फेंकना और ऐसे ही बीजों को जाया करना। तो अब मसलन आप हॉल में हैं ही नहीं, यानी आप हॉल में बैठी भी थी, आप कुछ पंखे इस्तेमाल कर रही थी, आप उठकर चली गई, दो जो आप इस्तेमाल कर रही थी वो भी चल रहे हैं और बाकी जो छह पंखे हैं वो भी चल रहे हैं, यानी आठ के आठ पंखे, और ये तब्जीर है। आप घर के अंदर नहीं है, पूरे घर की लाइटें ऑन है, ये तब्जीर है के? यानी अब क्या है कि ऐसे ही बेजा उसको आप इस्तेमाल कर रही हैं, बेजा खर्च कर रही हैं, है ना। कपड़े जरूरत के लिए हमें बनाने चाहिए, हमने इतने कपड़े बनाए हैं कि जरूरत से ज्यादा है, और बहुत से कपड़े ऐसे हैं क्योंकि अपना साइज तो तब्दील होता रहता है, फैशन बदलते रहते हैं और नए कपड़े आते रहते हैं, और फिर दिल तो नकद हार देते हैं ना उन चीजों पर। अब क्या है कि असराफ, तब्जीर। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली बात क्या की? वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, कि जब वो खर्च करते हैं तो असराफ नहीं करते, वलम यक्तुरू, और वो जो है वो बुखल भी नहीं करते। तो यहाँ पर जो फलम यक तुरु का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इसके क्या मानी है? यक तुरु काफ तारा, इसके मानी है कि जैसे मसलन आप देखें कि अगर जो है वो अगर कोई चीज भूनी जा रही है ना, तो अगर कुछ भी जो है वो भून रहे हैं और उससे जो मामूली सा धुआं निकल रहा है तो उसके लिए भी कतारा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह लकड़ी जब जलती है, लकड़ी जलती है तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसके लिए भी कतारा लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि कतारा जो है बहुत ही हकीर को कहते हैं, बहुत ही मामूली सी चीज को कहते हैं, है ना, कि गोया के यानी अगर ये बात आ जाए कि कतारा जो है वो लकड़ी से जलते वक्त जो लकड़ी जल रही है उसमें से निकलने वाला धुआं और या फिर चीज को भूनते वक्त का धुआं, तो ये जो होता है ना मुकतिर शख्स ये हर चीज से धुएं की तरह चीज को लेता है, यानी इतनी मामूली चीज देता है कि जैसे कि किसी को धुआं दिया जाए। अब धुआं क्या होता है, आप किसी को धुआं दें तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि कुछ मुझे मिला, इतना हकीर इतना मामूली। असल में कतर का लफ्ज जैसे धुएं की तरह की स्याही के लिए भी बोला जाता है, जैसे कोई झूठ बोले और उसके चेहरे पर जो है वो कालक आ जाए तो उसके लिए भी कतरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी चीज को कम करना, बहुत ही कम किसी को देना, जो फितरतन कंजूस लोग होते हैं उनके लिए कतूरा लफ्ज आता है। वकान अल इंसानु कतूरा, सूरत नंबर 17 आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला कहते हैं और इंसान का दिल बड़ा ही तंग है, इंसान बहुत ही कम खर्च करने वाला है। तो इसराफ की जिद जो है ये जो है वो कतरा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ना वो इसराफ करते हैं और ना ही वो बहुत ज्यादा बखील और तंग देने वाले होते हैं। बनू सलमा के कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि हमारा जो सरदार है जद बिन कैस बड़ा बखील है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से तुम्हारे सरदार अमर बिन जम्मू हैं और वो जिनके घुघरियाले जुल्फों वाले बाल थे और वो जो थे वो बड़े फयाज आदमी थे, खुले देने वाले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सरदार को तब्दील करके जो नाम बताया वो क्या था, अमर बिन जम्मू, कि तुम्हारे सरदार हैं सफेद घुमरियाले घुंघरियाली जुल्फों वाले। गोया के यानी फयाजी सखावत ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अब यहाँ पे ये भी जरूरी है कि हम ये देख लें कि यहाँ पे अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि ना वो असराफ करते हैं और ना ही वो लोग जो है वो कतर करते हैं, कतूर में वो की बीमारी में मुब्तला नहीं होते, फिर वो करते ही क्या है। वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, तो वो इन दोनों के दरमियान होते हैं। ज़ालिका क़वामा, क़वाम पर, तो क़वाम क्या चीज होती है ना, क़वाम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और वैसे तो देखें कि काफ वाव मीम कौम से है ना, ये लफ्ज कौम से जो है वो निकला है, तो इसके मानी क्या है। इसके यहाँ पे ये लफ्ज जो है वो एतदाल के मानी में इस्तेमाल हुआ है कि ये वो लोग हैं जो खर्च करने में ना असराफ से काम लेते हैं और ना ही जो है ये बुखल से काम लेते हैं, बल्कि ये लोग जो हैं वो एतदाल पर रहते हैं। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन फिक्हिर रजुली कस्दहु फी मईशति, इंसान की अक्लमंदी की अलामत यह है कि खर्च करने में मियाना रवि इख्तियार करे, ना असराफ में मुबतला हो और ना ही बुखल में मुबतला हो। तो इसराफ और इक्तार के दरमियान एतदाल इख्तियार करना, मियाना रवि इख्तियार करना, इसको जो है वो कवामा जो है वो कहा जाता है। यानी अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना असराफ है, अल्लाह की अतात में अगर खर्च ना कर किया जाए तो ये भी बखीली है, और अल्लाह के अहकाम और अतात के मुताबिक खर्च किया जाए तो ये कवाम है। अब आप देखें कि इसमें आप इसको यूं भी आप ले सकती हैं कि असराफ तीन चीजों का नाम है। नंबर एक, नाजायज कामों में दौलत सरफ करना, खा वो एक ही पैसा क्यों ना हो, नाजायज कामों में दौलत खर्च करना है ना, यार बाशी दोस्तियां हैं और वक्त पैसे उड़ाए जा रहे हैं, अयाशी की जा रही है, शराब पी जा रही है, मेले ठेले है ना। तो क्या है कि ये चीज असराफ है। दूसरा ये कि जायज कामों में खर्च करना लेकिन हद से आगे बढ़ जाना। हद से आगे बढ़ना क्या है कि अपनी इस्तेदात से ज्यादा खर्च करना, या ये कि लोगों को दिखावे के लिए खर्च करना। मसलन बाज औकात लोग शादी ब्याह करते हैं तो खुद हालात इजाजत नहीं देते, उनके पास पैसे हैं नहीं, लेकिन वो कैसे खर्च कर रहे हैं, हजार लोगों को बुलाया है ना, हजार लोगों को अगर बुलाया है तो आप सोचें कि नहीं, बस सादगी से करनी है शादी, पर हजार लोग हैं और आप देखेंगे फिर कितना खर्चा होगा ना, कितनी डिशेज हैं और वो कुर्सियां और 5 स्टार होटल और फिर सारी चीजें, तो कितना खर्चा हो जाता है ना। तो ये क्या है, और फिर पैसे पास नहीं है, दूसरों से मांगे जा रहे हैं, और जो अगर देता नहीं है कोई तो उससे नाराज होते हैं, और अगर कोई देता है तो समझाता है तो कहते हैं लो जी पैसे दे के बड़ा एहसान करता है, नसीहतें नहीं छोड़ता आप। और वो आप सोचे यानी क्या कैसी उसके हालात हैं। तीसरी बात यह है कि ये चीज भी असराफ में आती है कि नेकी के कामों में खर्च करना मगर अल्लाह के लिए नहीं, रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए, ये भी असराफ है, इसका कोई अजर नहीं है। अल्लाह के काम रास्ते में खर्च तो किया है लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए है ना। तो अब आप देख लें कि बहुत से लोग अल्लाह के रास्ते में देते हैं लेकिन चाहते हैं कि उनकी वाह वाह हो, तो उसका भी कोई अजर नहीं है, ये भी असराफ है। अच्छा, तो एक तरफ असराफ में ये तीन बातें आती हैं, दूसरी तरफ बुखल के अंदर भी दो चीजें आती हैं। नंबर एक कि आदमी अपनी और अपने बाल बच्चों की जरूरियात जो है ना उस पर अपनी कुदरत और हैसियत के मुताबिक खर्च ना करें, ना अपने ऊपर ना अपने बाल बच्चों पर। तो ये क्या है, ये बुखल है। अपने ऊपर और अपने बाल बच्चों पर ये पहला हक है कि माल का, कि इसको जो है वो खर्च किया जाना चाहिए है ना। तो इंसान जो है खर्च ही नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, नेकी और भलाई के कामों में पॉकेट में से, जेब में से, हाथ में से एक पैसा भी ना निकले, एक पैनी भी ना निकले है ना। अब ये क्या है, ये बुखल है। बाज लोग क्या करते हैं कि बीवी बच्चों में नहीं खर्च करेंगे, अपना कोई हाल नहीं, बीवी बच्चों का कोई हाल नहीं, घर का कोई हाल नहीं, बाहर सखावत के उसकी के डंके बच रहे होते हैं है ना। तो ये क्या है, ये बखीली है, और ये बड़ी सख्त बीमारी है जो जिसके अंदर लोगों में पाई जाती है। और दूसरा ये कि दुनियादारी के कामों में तो खर्च करना, अल्लाह के दीन के लिए जो है वो एक पैसा भी जो है वो खर्च ना करना। इस सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस हैं इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना असराफ को पसंद किया और ना ही बखीली को पसंद किया। आपने कहा कि जब तू खर्च करे तो इस तरह से खर्च ना कर कि फिर इसके बाद जो है वो तू मोहताज हो जाए है ना, बल्कि क्या है कि मियाना रवि इख्तियार कर। जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, सदका वही बेहतर है जिसके बाद इंसान खुद मोहताज ना हो जाए है ना। बुखारी की ये रवायत है कि इतना नहीं करना चाहिए कि उसके बाद इंसान जो है वो मोहताज हो जाए। तो अब यहां पर ये बात हमारे सामने आई कि बरादरी में नाक ऊंची रखना, दौलत और फयाजी के डंके बजवाना, या फिर ये है कि किसी की कंजूसी और बखीली मशहूर हो जाए कि बीवी बच्चों की जरूरतों पे भी खर्च ना करना है ना। तो क्या बात इससे पता चलती है कि ये जो है ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। तो ना इख्तार करना है ना इसराफ, तो करना क्या है, वकाना बैन ज़ालिका कवामा, वो इन दोनों के दरमियान जो है वो एतदाल पर कायम रहते हैं, कवाम। जैसे कवाम क्या है, उम्मते वस्त जो है وہ ایسی قوم ہے جو قوام معتدل ہے، اسی طرح خرچ کرنا بھی ان کا کیا ہے کہ وہ معتدل ہے. ان کی جو ہے وہ آیت نمبر 1 میں آگے اللہ تعالیٰ نے 3 جو ہیں وہ برائیاں بتائی ہیں. اب یہاں پر 6 صفات بتا کر 1 میں 7, 8, 9 تین اور اوصاف جو ہے وہ عباد الرحمان کے سامنے رکھے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا یدعون مع اللہ الہا آخرا، کہ اللہ کے سوا وہ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، گویا کہ وہ شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ نہیں قتل کرتے کسی نفس کو، التی حرم، جس کو حرام کر دیا ہے اللہ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، تو نہ حق کسی کو وہ قتل نہیں کرتے. تو اور تیسری صفت کیا ہے؟ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو کوئی یہ کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ جو ہے وہ پائے گا، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ پا کے رہے گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آیت نمبر 68 سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے 3 اوصاف جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور ان میں 7 نمبر کیا ہے؟ لا یدعون مع اللہ الہا آخرا، کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی عبادت میں شریک نہیں کرتے، وہ اللہ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو اللہ کے اختیارات میں جو ہے وہ شریک نہیں کرتے، وہ ایک اللہ کی جو ہے وہ بندگی کرتے ہیں، اور ایک اللہ کی بندگی کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا یہ توحید ہے. اور اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی شرک پایا جائے گا، یا وہ ذرہ برابر بھی شرک کرے گا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ جو 3 جو ہے وہ کاموں سے اجتناب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا، تو عرب معاشرے میں شرک، قتل ناحق اور زنا، ان 3 گناہوں کی بڑی کثرت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو بڑے بڑے گناہوں میں شامل کیا ہے، کیونکہ عرب کا جاہلانہ معاشرہ بری طرح اس سے متاثر تھا. ہر قبیلے کا الگ الگ بت ہوتا تھا، پھر ایک بڑا بت کئی قبائل کا مشترکہ بھی ہوتا تھا، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ 360 بت رکھ دیے تھے، بیت اللہ کو بتوں سے بھر دیا تھا. اسی طرح پورے عرب میں جو تھا وہ لوٹ مار اور قتل و غارت کا دور دورہ تھا. ہر قبیلہ جس دوسرے قبیلے کو جو دشمن سمجھتا، تو پھر بس اس سے قتل و غارت کرتا، پھر اس کو ان کی آپس میں جنگ ٹھن جاتی، قتل کرتے، دیکھتے ہی نہیں تھے کسی چیز کو، حتیٰ کہ گھروں کے گھر، قبیلوں کے قبیلے، بستیوں کی بستیاں جو تھیں وہ قتل و غارت میں جو تھیں وہ مٹ گئیں، اجڑ گئیں، ہے نا. اور اسی طرح وہاں پہ زنا بڑا عام تھا. اب آپ دیکھیں کہ حد کیا تھی ان کے زنا کی، کہ ایک طرف زنا کے واقعات ہوتے، دوسری طرف شاعر جو تھے نا زنا کے واقعات کو شاعری میں بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے. صفا اور مروہ پہاڑیاں جو تھیں، 2 بت ان پر رکھے ہوئے تھے، ایک اصاف اور دوسرا نائلہ. اب آپ دیکھیں کہ اصل بات کیا تھی، ان دونوں کی اصل کیا تھی، کہ یہ ایک زانی مرد اور زانی عورت تھے جنہوں نے حرم کعبہ میں زنا کیا تھا. ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ انہوں نے جب حرم کعبہ میں زنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم میں ان کو پتھر بنا دیا. اب بعد کے لوگوں نے کیا کیا، انہی پتھروں کو صفا اور مروہ پر رکھ کر ان کی پوجا شروع کر دی، ہے نا. اور آپ یہ بات دیکھیں کہ وہ اپنی پھر شاعری میں اس کا ذکر بھی کرتے تھے، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، ہے نا. اسی طرح حضرت عمر بن جموح، یہ بڑے ہی جو ہیں وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہی وہ عمر بن جموح ہیں جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بنو سلمہ کا ان کو سردار بنایا، بنو سلمہ جو قبیلہ تھا اس کا سردار بنا دیا، بڑے فیاض تھے. ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ بھی جو تھے وہ بت کی پوجا کرتے تھے، اور ये बनू सलमा के रईस थे, और बुत खाने की जो सपुर्दगी होती है ना, जैसे वली, ये बुत खाने की के वली थे, उनके सपुर्द थी तौलियत, और इन जुनून की हद तक इनके अंदर बुत प्रस्ती पाई जाती थी। लकड़ी का एक बुत बनाकर इन्होंने घर रखा हुआ था, सुबह शाम उसकी प्रस्तिश करते थे, बड़े तमाम के साथ उसको सजाते थे, बनाते थे, संवारते थे, कि बहुत से दिन रात इनके इसी बुत प्रस्ती में गुजरे, यहां तक कि ये बुढ़ापे की दहलीज पे इन्होंने कदम रख लिया। और जब जो है वो मदीना में इस्लाम जो था वो फैला, तो इनके घर में जो है उसकी इस्लाम की शमा जो है जो रोशन हुई, तो इनके बेटे जो हजरत मुआज थे वो भी मुसलमान हुए। अब ये कि बेटा भी बाप को समझाता था, ये मानते ही नहीं थे, और लोग भी जो मुसलमान थे इनको समझाते थे, ये मानते ही नहीं थे। इन्होंने जो इनका बेटा और इनके जो बेटे के दोस्त थे और जो मुसलमान नौजवान थे, उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने क्या तरकीब सोची कि वो रोज रात के वक्त हजरत अमर के बुत को लेकर बाहर किसी गड़े में डाल देते, और गड़ा वो जो गंदगी से भरा हुआ हो। अब क्या होता, सुबह सुबह उठकर इन्होंने इबादत करनी होती थी, सुबह उठते अपनी जगह पर, जब इनकी जगह पर बुत इनका नजर ना आता, बड़ा सटपटाते, चिल्लाते कि तुम लोगों का सत्यानाश, मालूम नहीं मेरे माबूद को कौन ले गया है, हमारे माबूद को कौन ले गया। फिर उसकी तलाश में निकलते, ढूंढते, जहां से मिलता उसको साफ करते, नहलाते, खुशबू लगाते, उसे अपनी जगह पर लाकर रखते, और कहते खुदा की कसम, अगर मुझे पता चल जाए कि तेरे साथ ये सलूक किसने किया, तो फिर जो है ऐसी उसकी दरगत बनाऊं कि दुनिया देखे। अब हर रोज ऐसा होने लगा कि बुत जो है रात को नहला दुला कर, दिन भर खुशबू लगा कर रखते, सुबह उसको किसी गंदगी के गड़े में से निकालते। अब एक दिन तंग आकर बुत के गले में तलवार लटकाई, कहने लगे खुदा की कसम मुझे तो पता नहीं कि कौन तेरे साथ ये गुस्ताखी करता है, अब ये तलवार तेरे पास है, तू खुद अपना हिफाजत और दिफा कर। अब फिर लड़कों ने जब देखा कि बुत की गर्दन में तलवार लटकी हुई है, बहुत हंसे, उन्होंने तलवार को उतार कर अपने पास रखी, और बुत को एक मरे हुए कुत्ते के साथ रस्सी में बांध कर बनू सलमा के एक ऐसे कुएं में लटकाया जिसमें लोग कूड़ा फेंका करते थे। अब सुबह को अब हजरत अमर ने जो है देखा कि बुत भी गायब और तलवार भी गायब, फिर तलाश में निकले। अब बुत को मुर्दा कुत्ते के साथ गिलाजत के कुएं में जब लटका हुआ देखा, तो बड़ा उनको गुस्सा आया। अब उनको ना बुत परस्ती से नफरत हो गई, और इसके बाद रास्ते में किसी मुसलमान से मिले और उसके सामने अपना दुखड़ा रोने लगे, बताने लगे कि मेरे साथ तो बस अब ये मुसीबत है जो हर रोज होने लगी। मुसलमान ने बड़ी मुलामत की और कहा कि ये कैसे बुत को आप पूछते हैं जो ना नफा दे सकते हैं और ना ही नुकसान, मेरी मानो तो इन बुतों पर 3 हरफ भेजो। 3 हरफ का मतलब क्या है, लानत भेजो, और एक अल्लाह और अल्लाह का जो बरहक रसूल है उस पर ईमान ले आओ। वो वक्त कुछ ऐसा था कि बस दिल बड़ा उनका जख्मी था कि दिल में उस आदमी की बातें उतर गई और उसी वक्त जो है वो मुसलमान हो गए। और कहते हैं कि जब मुसलमान हुए शायर भी थे, अपने बुत के खिलाफ इन्होंने हिज की है, शेर की, शेर के कहने लगे खुदा की कसम अगर तू इला होता तो तू और मरा हुआ कुत्ता कुएं के अंदर एक रस्सी के साथ बंधे हुए ना होते, लाना तो तेरे इस जगह पड़े होने पर, वो कैसी जलील जगह थी, अगर मैं तुझे इस जलील जगह से तलाश करके ना लाता तो तू वहीं औंधा पड़ा रहता। इस अल्लाह पाक ने मुझे इससे पहले बचा लिया कि मैं कब्र की तारीकी में रहन रख दिया जाता। सारी तारीफ इस खुदाए बुजुर्गो बरतर की जो एहसान करने वाला, रिस्क देने वाला और बदले के दिन का मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह तो इससे जो है क्या पता चलता है कि अल्वाहिबिर रज़ाकी रयानिद्दीन के कैसे अल्लाह ताला ने इनको शऊर दिया। तो ये थे वो हालात। इसी तरह एक हदीस में पता चलता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत है कि एक मर्तबा आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कि तू किसी को अल्लाह का जो है वो शरीक ठहराए, मद्दे मुकाबिल ठहराए, हालांकि तुझे पैदा अल्लाह ने किया है। पूछा गया कि इसके बाद, कहा कि ये कि तू अपने बच्चे को इस खौफ से कत्ल कर डाले कि वो तेरे साथ खाने में शरीक हो जाएगा। पूछा गया फिर, फरमाया ये कि तू अपने हमसाए की बीवी से जिना करे। तो ये क्या है कि ये कबीरा गुनाह है, और ऐसा नहीं था कि बस ये तीन कबीरा गुनाह अरब की सोसाइटी में पाए जाते थे, बल्कि क्या थे, गुनाह तो बहुत से करते थे, लेकिन उस वक्त ये तीन गुनाह जो थे इसमें वहां की सोसाइटी तो जो थी वो बुरी तरह जो थी वो लतपत थी। तो अल्लाह ताला ने 7 नंबर से क्या बताई, ला यदून मल्लाही इलाहन आखरा, कि अल्लाह के सिवा वो किसी को माबूद नहीं पुकारते, एक अल्लाह की बंदगी करते हैं, एक अल्लाह का कहना मानते हैं। और आज बुतों की पूजा तो नहीं है उस तरह, तो अब क्या है कि ख्वाहिशात नफ्स की पूजा ना करना, रस्म और रवाज की, जमाने की, बाजू का दोस्तों की वजह से लोग गुनाह कर लेते हैं, बाजू का जो है वो फैमिली की जो रस्म और रवाज है पता है कि गलत है, बस उसको निभाने की खातिर, है ना। तो जिसकी भी पूजा की जाएगी, कहना माना जाएगा अल्लाह को छोड़कर, तो असल बात क्या है कि अल्लाह को छोड़कर दूसरा माबूद बना लिया है। तो ये है नंबर 7 कि शिर्क नहीं करना। नंबर 8, वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हरमल्लाहु इल्ला बिलहकी, कि वो अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नहक कत्ल नहीं करते। तो अब इसका मतलब ये है कि नहक कत्ल तो नहीं करते, लेकिन हक के साथ कत्ल कर सकते हैं। तो हक के साथ कत्ल करना क्या है, नंबर 1 जान का बदला जान है, कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसका बदला जो है वो लिया जा सकता है। और नंबर 2 क्या है कि अगर कोई शख्स जो है वो मुर्तद हो जाए, यानी इस्लाम को वो छोड़ दे, तो उसको भी जो है वो यानी इस्लाम कबूल करके वो इस्लाम से जो है वो निकल जाए, तो मुर्तद की सजा भी जो है वो कत्ल है, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या हैं कि ये हक के साथ हैं। और तीसरा जो है, तीसरी एक शक्ल है, और वो क्या है कि शादीशुदा होकर अगर कोई जिना करेगा तो फिर उसको क्या किया जाएगा, रजम कर दिया जाएगा। तो हक के साथ कत्ल करने की 3 शक्लें हैं, एक जो है वो कत्ल का बदला कत्ल, दूसरा मुर्तद के लिए कत्ल की सजा, और तीसरा जानी के लिए जो है वो रजम करना। तो हक के साथ कत्ल किया जा सकता है, और इसके अलावा कोई और शक्ल नहीं है कि किसी को कत्ल किया जाए। जैसे बाज लोग ये कहते हैं कि लो जी 2 ही बच्चे होने चाहिए। कल ही कुछ लोग बात ये कर रहे थे कि जब संभाल नहीं सकते, तरबियत नहीं कर सकते, तो फिर ज्यादा बच्चे क्यों। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं किया, कहा कि तुम ज्यादा बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते तो इसलिए अब तुम ज्यादा बच्चे तुम्हारे नहीं होने चाहिए। कहीं अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम तो यानी तुम मुआश के जिम्मेदार हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कहते हैं कि ला तक्तुलु औलादकुम मिन खशियत इमलाक, के माल की तंगी की वजह से तुम औलाद को जो है वो कत्ल ना करना। और जमाने जाहिलियत में लोग जो थे वो इस खदशे से जो थे वो कत्ल कर देते थे। अच्छा, अपने बच्चे को इस वजह से कत्ल करना या दूसरे को कत्ल करना, बाज औरतें या बाज मर्द खुद जो है वो क्या करते हैं कि अगर औरत प्रेग्नेंट भी हो जाए तो कहते हैं कि अब जो है बच्चा जाया करवा दो, या वो दवाई कोई खा ले या हॉस्पिटल में जाकर कर लेना। तो ये भी ये नहक बच्चे को कत्ल करना है, नहक। और अल्लाह ताला कयामत के दिन पूछेगा कि तुमने जो है ये जो जान मैंने तुम्हें दी थी, तुमने उसको जो है वो क्यों जो है बगैर किसी वजह के जो है नहक उसको कत्ल कर दिया। तो मैं और आप, मेरा और आपका काम तो कोशिश करना है, तरबियत की कोशिश करना है, और उसके बाद नताइज अल्लाह पर छोड़ देना है। इसी तरह मैं और आप राजिक नहीं है, अल्लाह राजिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला जो है जो मुझे और आपको देता है, तो अल्लाह ताला जो है वो जितने भी किसी के बच्चे हैं अल्लाह ताला उनको देगा। तो ये टीवी वाले अगर ये दिखाते हैं कि फलां बच्चे जो थे वो फलां जगह छोड़ दिए, तो और उन्होंने कहा कि हम उसकी अब तरबियत नहीं कर सकते, हम उनको खिला नहीं सकते, तो आपका काम नहीं है कि ऐसे जुमले बोलें कि हाँ भाई फिर इतने बच्चे पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी जो है ना, ये अल्लाह की नाफरमानी है और ये शिरकिया जुमले हैं। ये अल्लाह के इख्तियारात गोया के आपने अपने पास ले लिए, और अल्लाह ताला कहते हैं वाइजन नफूस उज़ुविजत वाइजल मौऊदत सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कि जब जिंदा गाड़ी भी लड़की से सवाल किया जाएगा कि किस गुनाह की वजह से वो कत्ल की गई। बाज़ लोग इसलिए जो एबॉर्शन करवा लेते हैं, बच्चा जाया कर देते हैं कि बेटियां पैदा हो रही हैं, और आप देखें कि आप इसकी रिसर्च करें कि कितनी ज्यादा बेटियां हर साल जो है ना अबॉर्शन के जरिए उनको जाया करवा दिया जाता है। हमल में लोग पता कर लेते हैं, अगर बेटी है तो उसको जाया करवा देते हैं। बाज़ औक़ात शौहर मजबूर करता है, बाज़ औक़ात सास मजबूर करती है, और आप देख लें कि शौहर और सास या फिर वो औरत खुद अगर ऐसा करे या फिर सोसाइटी में से कोई ऐसा करे तो इसका क्या मतलब है कि गोया के आप जो हैं वो अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं है। आपको क्या पता कि बेटी में खैर है या कि बेटे में खैर है ना। तो ये चीज भी क्या है कि कत्ल करने के जो है वो जुमरे में आती है, और ये गुनाहे कबीरा है, गुनाहे कबीरा है। अगर आपको और मुझको हमारे माँ बाप ने जो है वो इसी तरह जाया करवा दिया होता तो आज हमारा वजूद ही ना होता। हम एक जुल्म कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। और अगर कोई डॉक्टर ये काम करवाती है तो वो भी इसमें शामिल है, यानी जो जो इसमें शामिल है वो सारे अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को ना हक हलाक नहीं करते। एक दफा एक औरत ने कहा कि मैं यानी जैसे ज्यादा उम्र हो गई और मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मैंने चीजों को उठाया कि मेरा हमल जाया हो जाए, भारी चीजों को उठाया और फिर मेरा वो हमल जाया हो गया, क्या मुझे उसका भी गुनाह मिलेगा? अब उसको तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। बाज़ औक़ात यानी ये क्या है, ये भी एक जो है वो बनावटी शर्म है कि लोग क्या कहेंगे कि लो जी अब ये जो है ना अब ये प्रेग्नेंट हो गई। अल्लाह से शर्म नहीं आती है, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए लोगों से शर्म आती है। तो गलत काम हो गया कि अगर कोई औरत बड़ी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई है ना। ये तो अल्लाह की देन है, जिसको चाहे जब चाहे दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े थे, उनकी बीवी बूढ़ी थी, बुढ़ापे में अल्लाह ने उनको औलाद दे दी, अना अजूज़ुन है ना। उन्होंने कहा था मैं बूढ़ी हूं, और फरिश्ते ने कहा कि तुझे औलाद होने वाली है, तो फदाहकत वो हंस पड़ी कि क्या मेरे यहां भी औलाद हो सकती है। तो ये तो अल्लाह ताला की कुदरत के करश में है, बिन मौसम के फल तो मिलते हैं ना। आज यहाँ अमेरिका और कनाडा रहकर और बर्तानिया में रहकर बिन मौसम के फल तो बड़े अच्छे लगते हैं है ना। सर्दी का मौसम है, आज बाहर स्नो बारी हुई है, घर में आप हीटिंग में बैठी हैं, बिन मौसम का फल है ना। बिन मौसम के फल आप खाते हैं तो तब फिर अल्लाह से डर नहीं लगता। वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक, अल्लाह को खूब पता है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। वला यज़नून, और वो जिना नहीं करते। सूरत नूर में आप इसकी तफसील पढ़ चुकी कि सिर्फ जिना ही नहीं, अल्लाह ताला ने वो रास्ते बंद कर दिए, वहां पे रकावटें खड़ी कर दी कि जिनसे जिना के दरवाजे खुलते हैं, है ना। जिना क्या है? जिना क्या है? जैसे किसी भी बिल्डिंग का गेट, और अब आप देखें कि गेट तक पहुंचने से पहले अल्लाह ताला ने वो रोशनदान, वो खिड़कियां बंद कर दी। नजरों की हिफाजत, अपनी सीने पे ओढ़निया डाल लो, अपनी जेबो जीनत का इजहार ना करो, पांव मार कर जमीन पर चलती चला ना करो, अपनी आवाज की हिफाजत, खुशबू लगाकर मर्दों को, मर्दों के जो सेक्स के जज्बात हैं उनको ना भारो। तो कितनी ज्यादा चीजें हमने सूरत नूर में पढ़ी, क्योंकि अगर रोशनदान और खिड़कियां जो हैं अगर बंद कर दी जाएं तो फिर गेट नहीं खुला हुआ होता ना, फिर गेट खुलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो जिना से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने और बहुत से इकदाम कर दिए। वला यजनून, और वो जिना नहीं करते। नंबर 9, वमन यफअल ज़ालिका यल्का आसाम, और जो कोई ये काम करेगा, वमन यफअल ज़ालिका, और जो कोई ये करेगा, जो कोई शिर्क करेगा और कत्ल करेगा, कत्ले ना हक और जिना करेगा, ज़ालिका यल्का, तो मिलेगा उसको, पाएगा वो असामा। असामा क्या है? अलिफ सामीम इस्म गुनाह को भी कहते हैं, और आसिम गुनाह करने वाला, और जो है वो असीम गुनाहगार, और असाम जो है, मुफस्सरीन ये कहते हैं कि असामा जो है इसके मानी है गुनाह की सजा, कि जिस जिसने ये गुनाह किए हैं उनको अपने गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। एक तो इसका ये मानी है, जैसे असामा जो है कहते हैं नतीजा गुनाह के, जैसे अब ये काम किया है अब ये तो मिलकर रहना है। मसलन जैसे किसी को यूं कहा जाए कि अब तुमने अगर जो गंदम की बजाय आपने जो बीज दिए हैं, जो बो दिए हैं, अब गंदम नहीं काट सके कर सकते, अब आपको जो ही काटने हैं ना। अगर कोई शख्स जो है वो जो है वो जब जमीन में जो है बोने का वक्त होता है तो खारदार झाड़ियां बोता है तो फलदार दरख्त उसको नहीं मिलेंगे, वो फल नहीं काट सकता। अब तो फिर कांटे काटने ही है ना, ये वही मतलब है कि जो बोया है अब वो तो काटना ही है। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, ये है इसके मानी। कि असल में असामा का लफ्ज कहते हैं यहाँ पे आया है नतीजे के तौर पर, कि जैसा इम्तहान दिया वैसा रिजल्ट तो मिलना ही है ना। तो गोया के जिसने शिर्क कत्ल और जना किया है तो हकूक अल्लाह और हकूक उलिबाद के सिलसिले में ये सबसे बड़े जुर्म हैं। ये तीनों जुर्म हकूक अल्लाह और हकूक उलिबाद के लिहाज से सबसे बड़े हैं। तमाम जो आसमानी किताबें हैं उनका इस पर इत्तफाक है, और जो कोई ये जुर्म का इर्तकाब करेगा वो कानून इलाही की हिफाजत से महरूम हो जाता है, लाजमन उसको असामा मिलेगा, यानी गुनाह के नतीजे में सजा मिलेगी। एक तो इसके ये मानी है मुफस्सरीन कहते हैं, कि दूसरे इसके मानी है कि असामा जो है ये जहन्नुम की एक वादी का नाम है जो सख्त और शदीद अजाबों से पुर है, और जो भी ये गुनाह करेगा तो उसको जो है जहन्नुम की ये वादी असामा जो है वो मिलकर रहेगी। फिर फरमाया आयत नंबर 69 में युदाअफ लहुल अजाबू, उसको दुगना दिया जाएगा अजाब, यौमल कयामती कयामत के दिन, यौमल कयामती कयामत के दिन, फयखलुद फीही मुहाना, और उसी में वो हमेशा जिल्लत के साथ जो है वो पड़ा रहेगा। अब आप देखें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि युदाअफ जो है कि दुगना दिया जाएगा उसको अजाब, इसका क्या मतलब है युदाअफ? आपको ये बात पता ही है कि युदाअफ का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है किस लिए? दुगने के लिए, यानी जैसे मुदाफ मुदाफल है, या पीछे अदाफ मुदाफा, यानी कोई चीज दुगनी चुगनी होकर किसी को जो है वो दी जाए। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये जो कहा कि उसको अजाब तो मिलेगा लेकिन युदाफ है ना, युदाफ यानी गोया के अजाब जो है वो इजाफा करके दिया जाएगा, यानी आम इससे कि ये अजाब दुगना हो या उससे भी ज्यादा। अब ये नहीं पता, यानी यहां से ये नहीं आ रहा कि सिर्फ दुगना मिलेगा, बल्कि क्या है कि इजाफा दुगना भी हो सकता है, चुगना भी, और कई गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके मानी यहाँ पर युदाफ के मानी है कि इजाफा इजाफा होगा। जैसे आप पीछे पढ़ चुकी लाता कुलुर रिबा दाफा मुदाफा, कि आप सूद को दुगना चुगना करके जो है वो ना खाओ। तो ये जो जराइम का नतीजा है ना, क्या है कि कयामत में जब उनको सजा मिलेगी तो उतनी नहीं मिलेगी कि बस जितनी गुनाह था तो सजा भुगत कर वो छूट जाएं, बल्कि क्या है कि सजा जो है उसमें इजाफा होगा। इजाफा क्यों होगा? इसलिए कि जुर्म बहुत संगीन था, इसलिए कि उन्होंने ऐसा जुर्म किया कि अल्लाह और बंदों के हुकूक जो थे वो पामाल कर दिए, है ना। तो अजाब में इजाफा किया जाएगा, तो अजाब में इजाफा संगीनी, अजाब में इजाफा जो है जुर्म की संगीनी को जाहिर करता है। दूसरी बात यह है कि मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि अजाब जो है ना उसमें कभी वक्फा नहीं आएगा, अजाब का सिलसिला टूटने नहीं पाएगा, एक फिर दो फिर तीन मुसलसल उसको जो है वो अजाब जो है वो मिलेगा। और इसके एक और मानी भी हैं, एक तीसरे मानी भी हैं, और तीसरे मानी ये हैं कि सजा मिलकर रहेगी। अंदाज इतना सख्त है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं युदाअफ लहुल अजाब, उसको अजाब दिया जाएगा, मसलन अगर कोई शख्स जो है उसने कुफ्र किया है, शिर्क किया है, तो उसके साथ उसने कत्ल और जिना भी कर लिया है, अब जब उसको सजा मिलने लगेगी तो हर जुर्म की अलग अलग सजा मिलेगी। अब ये नहीं है कि एक सजा मिल गई है और उसका सजा पाकर बहुत ही बुरा हाल है और उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, एक तरफ से हटेगा तो दूसरे जुर्म में उसको पकड़ लिया जाएगा, तीसरे जुर्म में पकड़ लिया जाएगा, चौथे जुर्म में पकड़ लिया जाएगा। इसी तरह अगर किसी ने जो है वो एक दफा जिना किया है तो दो दफा किया है, तीन दफा किया है, तो हर जिना की अलग अलग उसको सजा मिलेगी। अगर किसी ने एक दफा कत्ल किया, दो दफा, तीन दफा, जितने कत्ल किए हैं तो एक दफा सजा नहीं मिलेगी, हर फेले कत्ल की अलग अलग सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। जितनी बार उसने जुर्म किया है उतनी बार अलग उसको जो है वो सजा जो है वो मिलेगी। तो ये जो मानी है ना, युदाअफ लहुल अजाबु यौमल कियामती, कयामत के दिन उसको सजा दी जाएगी और दुगनी चुगनी करके दी जाएगी। तो ये जो तदाफ है ना, ये जो इजाफा है, ये कैफियत में भी हो सकता है, कमियत में भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बड़ा सख्त अजाब हो, जैसे किसी को एक ही दफा बुखार चढ़ जाए और 105 और 6 पे चला जाए वो, है ना, किसी को एक ही दफा कोई सजा दे दी जाए, वो सख्त दे दी जाए। इसी तरह कैफियत या फिर दफा यानी बहुत बार बार उसको दी जाएगी, तो कई गुना बढ़ा चढ़ा कर उसको दिया जाएगा। और दूसरी बात कही अल्लाह ताला ने, वया खुलूद फी ही मुहाना, और उसी में वो हमेशा जिल्लत के साथ पड़ा रहेगा। आप देख लें, अभी मैंने आपको बताया था कि आयत नंबर 63 में आया है कि वा इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, हा व नून, हा पर जबर है तो मानी क्या है, आजी, नरमी, खाकसारी, एक वकार, और अगर हा पर पेश आ जाए तो जिल्लत के मानी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मुहाना आ गया है, तो अब जो है वो जिल्लत के अजाब में पड़ा रहेगा। अब ये नहीं है कि फी ही मुहाना के अजाब में वो जिल्लत के होगा, बल्कि यखलुद, यखलुद के मानी क्या है, हमेशगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि हमेशा हमेशा रहेगा इस अजाब में जलील और ख्वार होकर, जलील और ख्वार होकर इस अजाब में जो है वो हमेशा हमेशा जो है वो पड़ा रहेगा। तो ये सारी जो बातें हैं इससे क्या बात पता चलती हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानी, हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद को जो है वो पामाल करना, उसको अदा न करना, ये अल्लाह के अजाब को दावत देना है। और अल्लाह का अजाब लोगों बड़ा सख्त है और हमें इससे जो है वो डरना चाहिए।